प्यारे साथियों नमस्कार। आज 27 नवंबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं गौरव वर्मा जो दिल्ली से हैं, संतोष कुमार आप भुसावल महाराष्ट्र से हैं, सुनील कुमार बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं और मंतोष कुमार बोकारो झारखंड से हैं। गौरव, संतोष, सुनील और मंतोष, आप चारों नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मुझे आप लोगों को कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट इस ऑडियो को थोड़े से भी लंबे समय से सुन रहे हैं उन्हें इस सूचना की जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि इसका करेक्टर कुछ इस तरीके का है इस ऑडियो का कि लगातार नए नए स्टूडेंट्स नए नए श्रोता जुड़ते चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लगभग लगभग रोजाना ही मुझे बतानी पड़ती हैं और फिर फ्राइडे को तो बताना ही होता है। तो दोस्तों, कुछ सूचनाएं हैं और वो ये कि कल चूंकि सैटरडे है और उसके नेक्स्ट डे संडे है, तो इसलिए सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स उसी तरह से मिलेंगी जिस तरीके से अभी तक मिल रही हैं, वो नॉलेज सेंटर पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही आपको नॉलेज सेंटर पर कुरुक्षेत्र हिंदी और इंग्लिश तथा योजना पत्रिका हिंदी और इंग्लिश के एक एक आर्टिकल भी अवेलेबल होंगे, यानी कि टोटल चार आर्टिकल्स इन दोनों पत्रिकाओं के आपको नॉलेज सेंटर पर पढ़ने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही जो फर्स्ट सेकंड बैच है उनके लिए स्पेशल ऑडियो भी अवेलेबल रहेगा जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जहां तक थर्ड बैच का सवाल है उनके लिए भी स्पेशल ऑडियो होगा, लेकिन दिन उनका सैटरडे और संडे ना होकर के हम किसी और दिन रखेंगे, अभी वो जरा सा फाइनल होना है, तो उन्हें भी स्पेशल ऑडियो अवेलेबल होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा थर्ड बैच के स्टूडेंट्स को कि स्पेशल ऑडियो उनको भेजा जाना शुरू किया जा चुका है। मित्रों, अब इस सूचना के बाद मैं अब अपने रूटीन पर आता हूं और आप जानते ही हैं कि हम लोगों का जो रूटीन होता है वो लाइफ मैनेजमेंट से शुरू होता है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो लाइफ मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है वो न केवल नौजवान साथियों के द्वारा ही बहुत पसंद किया जा रहा है बल्कि उनकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो भी इसे सुनना पसंद करते हैं। तो मित्रों, ये आप लोगों का स्नेह है और सच पूछे तो आप लोगों को जो फायदा मिलता है या आप लोग जो इसे पसंद करते हैं उसकी ताकत है जो लगातार इस बात के लिए मुझे प्रेरित करता रहता है कि नहीं, मुझे कुछ न कुछ नई बात कहनी चाहिए, कुछ न कुछ अच्छे अंदाज में कहना चाहिए और इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने जो विषय चुना है इसके पीछे जो घटना है वो सच पूछे तो अभी आमिर खान ने जो बात कही जिसको लेकर के पूरे देश में एक डिस्कशन विवाद की स्थिति बनी हुई है उससे आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो मैं आमिर खान का वक्तव्य क्या था और कितना सही था कितना गलत था क्या, मैं उस बात पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, मैं केवल एक संदर्भ की बात आपसे कह रहा हूं। मित्रों, इससे पहले भी जिस संदर्भ को लेकर के मैं आगे चलना चाहता हूं, आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी राजनेता कुछ कह देते हैं और जब उस पर विवाद की स्थिति आती है तो फिर उन्हें सफाई देनी पड़ती है कि नहीं, या तो मैंने ऐसा कहा ही नहीं और यदि कहा था तो मेरा मतलब यह नहीं था, या अगर मतलब यह नहीं था भी नहीं कहा जा रहा है तो यह कहा जाएगा कि मेरी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं गया, या फिर यही बात कही जाएगी कि मेरी बात को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है। ये सब बातें कही जाती हैं। फ्रेंड, जब कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह की बातें कहता है कि मेरी बात ठीक से नहीं समझी गई या संदर्भ से काट कर पेश की जा रही है, तो ज्यादातर लोगों को मैंने पाया है कि वो सोचते हैं कि नहीं, ये गलत कहा जा रहा है, इन्होंने कहा होगा ऐसे ही, लेकिन अब चूंकि विवाद बढ़ गया है तो इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। नो डाउट कि बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है, लेकिन दोस्तों केवल ऐसा ही नहीं होता, ऐसा भी होता है कि वो सच भी होता है। होता यह है कि जब हम किसी भी वाक्य को या वाक्यों के समूह को, या कह लीजिए तीन चार वाक्य हैं, अगर पूरे संदर्भ से हम निकाल दें तो मजेदार बात यह है कि न केवल उसके अर्थ ही बदल जाते हैं बल्कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते आपका दोस्ताना व्यवहार भी है और आप कह दें कि यार तुम तो बिल्कुल ही गधे हो। मान लीजिए सामान्य तौर पर आपने कहा कि तुम तो बिल्कुल ही गधे हो, तो अब आपके पूरे आगे पीछे की बातचीत को अगर निकाल दिया जाए और केवल उस हिस्से को हाईलाइट किया जाए कि साहब उसने उसको गधा कहा, तब आप देखेंगे कि इस पर कितना भी बड़ा बवाल मच सकता है। अच्छी चीजों के लिए कभी बवाल नहीं मचता कि देखो इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि उसकी वो वैल्यू नहीं होती, उसकी सेलिंग वैल्यू नहीं होती, उसकी अट्रैक्शन वैल्यू नहीं होती, उसके सच पूछे तो डिस्कशन की भी वैल्यू नहीं होती, तो उन चीजों वे चीजें किनारे हो जाती हैं। लेकिन ऐसी जो निगेटिव चीजें होती हैं वो कोई भी समाज उसको पकड़ लेता है और फिर आगे उस पर फिर लोग अपने अपने तरीके से टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर के मैं जो आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो ये कि हम सब अपनी लाइफ में क्या करते हैं, और ये मेरा बहुत ही, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बहुत गहरा इस बारे में अनुभव रहा है, मैंने इस बारे में काफी ऑब्जर्वेशंस किए हैं और उस ऑब्जर्वेशन से ये पाया है कि ज्यादातर हम अपनी समस्याओं को टोटल समस्याओं से काट कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक समस्या है, कोई भी मेरी एक समस्या है, चाहे वो छोटी है या चाहे वो बड़ी है, तो होता यह है कि मैं अपनी उस एक समस्या को सिर्फ एक समस्या के रूप में देखता हूं, और जैसे ही मैं उसे सिर्फ एक समस्या के रूप में देखता हूं, आप मान करके चलिए कि मेरी जिंदगी से वो समस्या का टुकड़ा कटकर अलग हो जाता है। यानी कि वो जो समस्या है मूलतः केवल एक समस्या नहीं है। देखिए मैं बार बार समस्या शब्द का यूज करूंगा तो थोड़ा सा इत्मीनान से बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि भटकाव से आप बच सकें। मतलब हमारी जो जिंदगी है वो जिंदगी एक बहुत बड़े महासागर की तरह होती है, समुद्र की तरह होती है, जो बहुत विशाल है, जो बहुत विराट है। महासागर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि उसमें जो पानी है वो पानी लगातार प्रवाहित होता रहता है, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां का पानी वहां जाता है, वहां का पानी यहां आता है, और ये 24 घंटे निरंतर चलता रहता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, वो द्वीप की तरह नहीं होती, आइलैंड की तरह नहीं होती कि एक टापू जैसा समुद्र के बीच में बन गया, उभर गया, खड़ा हो गया, अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। हमारी समस्याएं आइलैंड की तरह नहीं होती, हमारी समस्याएं प्रवाहित होते हुए जल की तरह होती हैं। प्रवाहित होते हुए जल की विशेषता यह होती है कि वो टिक कर नहीं रहती और वो एक भी नहीं होती, यानी कि अभी जो पानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, पता लगेगा कि कुछ देर बाद वहां पर दूसरे पॉइंट का पानी आ जाएगा और जो ये पानी था ये बहकर कहीं और चला जाएगा। तो इस तरीके से मेरे जीवन में जो पानी है वो पानी भी लगातार एक जैसा नहीं है, एक से ही नहीं है, बल्कि पता नहीं कितनों का तालमेल है, कितनों का घालमेल है, कितनी चीजों से, कितनी पानी से वो मिलकर बना हुआ है। तो फ्रेंड, अगर हमारा जीवन ही ऐसा बना हुआ है तो निश्चित रूप से हमको ये मानकर चलना चाहिए कि मेरी जो एक समस्या है वह भी बहुत सी समस्याओं से मिलकर बनी है। वो है तो एक ही, हम उसे एक ही नाम देते हैं, लेकिन उसमें जो कंटेंट है, वो जो सब्जी आपकी बनी है, वो एक तरीके से मिक्स वेज है जिसमें पता नहीं जितनी भी चीजें अवेलेबल थी वो सब उसमें डाल दी गई। अब वो अच्छी बनी खराब बनी वो आपके ऊपर है, लेकिन चीजें उसमें सभी शामिल हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मेरे सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द है तो इसका जो इलाज है आपको क्या लगता है कि सिर्फ सिर में हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पेट खराब हो और सिर में दर्द हो रहा हो? आपको ताज्जुब होगा कि अभी मैं कुछ ही दिनों पहले हम लोग अपने एक परिचित के यहां गए थे, तो उनकी पत्नी की दांतों में बहुत काफी दर्द हो रहा था और वो बहुत से डेंटल स्पेशलिस्ट को उन्होंने देखा, डेंटिस्ट को दिखाया, लेकिन वो उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो बाद में किसी ने सजेस्ट किया कि आप ईएनटी वाले को दिखाएं, और वो फिर ईएनटी को दिखाया उन्होंने, जो नाक गले और आप सोचिए कि कान का इलाज करते हैं। जब ईएनटी वालों को उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये तो न्यूरो की प्रॉब्लम है, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। फिर उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, तब जाकर के उनकी समस्या का समाधान हुआ। यानी कि दर्द दांत में हो रहा था और प्रॉब्लम न्यूरो की थी, नर्व्स की थी, नसों की थी। तो मित्रों, लाइफ में भी यही होता है, समस्याओं के साथ भी यही होता है कि हमारी समस्या एक दिखाई दे रही है, फिर ये लगता है कि ये जो समस्या दिख रही है इसको हम यहीं से हल कर सकते हैं, सीधे सीधे इस पर अटैक करें और ये समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो समस्या है आपको एक दिख रही है, लेकिन वो कई समस्याओं का जोड़ है। और दूसरी बात, चूंकि वो कई समस्याओं का जोड़ है, कई समस्याओं से मिलकर के बनी हुई है, कई तत्व उसमें शामिल है, तो इसीलिए आपको उसका अगर स्थायी हल चाहिए, स्थायी समाधान चाहिए, तो उपाय भी उसकी जड़ पर करना पड़ेगा, उसके रूट कॉज पर जाना पड़ेगा। इसका मूल क्या है, वो पैदा कहां से हुई है? और मित्रों, अगर हम उसके मूल को नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर मालूम है क्या होगा, फिर होगा ये कि हमने जो इसका हल ढूंढा है वो हल अभी तो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाएगा, लगेगा जैसे कि दर्द कम हो गया है, समस्या कम हो गई है। कभी कभी तो ये भी लग सकता है कि समस्या खत्म ही हो गई है, लेकिन पता लगा कि कुछ दिनों के बाद या तो बिल्कुल विस्फोटक रूप में फिर से हमारे सामने आएगी, या फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर से वो उभर जाएगी। लेकिन इस बार जब उभरेगी तो वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा खतरनाक रूप में होगी, वो और भी ज्यादा जटिल हो चुकी होगी, वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होगी। इसलिए एक बात यह भी कही जाती है कि अगर आपको समस्या शुरू में दिखाई देने लगी है तो बेहतर है, समझदारी इसी में है कि आप उसे वहीं रोक लें। जैसे कि अगर बांध में छोटा सा भी छेद हो गया है तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप उस छेद को अभी ही बंद कर दें, अदरवाइज ये पक्का है कि वो छेद बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि पता लगा कि बांध ही टूट गया है, और फिर वो बहुत विनाशक होगा। गाड़ी के बारे में भी यही होता है, गाड़ी के इंजन में अगर थोड़ी सी भी खामी आ गई है और आप सोचे कि यार ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। वो उसकी जो छोटी सी खराबी है गाड़ी को और ज्यादा बड़े खराबी की तरफ ले जाएगी। तो दोस्तों, यहां जो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूं वो ये कि चाहे वो जीवन का क्षेत्र हो या फिर ज्ञान का क्षेत्र ही क्यों ना हो, याद रखिए कि ये बहुत ही अंतर संबंधित होते हैं, इनको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से देखने की कोशिश कीजिए। आप जब उन्हें बहुआयामी तरीके से देखेंगे, मल्टी डाइमेंशनल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, तो सही मायने में मैं समझता हूं कि आप एक वैज्ञानिक का काम कर रहे हैं, चाहे वो समाज वैज्ञानिक ही क्यों ना हो या जीवन वैज्ञानिक ही क्यों ना हो। इसके आपको बड़े चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। इसीलिए होता यह है मित्रों कि हम अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, लेकिन पता लगता है कि हम सुलझा नहीं पाते और लगातार पूरी जिंदगी इसी तरह से समस्याओं में उलझते चले जाते हैं, क्योंकि समझाने का जो हमने तरीका अपनाया था वो बहुत ही टेम्परेरी नेचर का था। जब हम समस्याओं को ही अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब फिर उसे अच्छे तरीके से सुलझा कैसे सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझसे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आते हैं और सीधे इस बात से शुरुआत करते हैं कि लिखना कैसे चाहिए, उत्तर कैसे लिखना चाहिए। मैं उनको समझा नहीं पाता हूं कि उत्तर लिखना तो लास्ट स्टेज है, वो जो समस्या है उत्तर लिखने की वो तो अंतिम स्टेज है। पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि पढ़ना कैसे चाहिए, वहां से फिर अच्छे उत्तर लिखने की और सही उत्तर लिखने की शुरुआत होती है, लेकिन वो मेरी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। जबकि अगर वो डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के चलते हैं तो चीजें बिल्कुल चमत्कारिक होती हैं, और वहीं अच्छा उत्तर लिखने का गुण भी छिपा हुआ है, सूत्र भी छिपा हुआ है। मेरे पास एक एसएमएस आया है जो थर्ड बैच के स्टूडेंट गुरवीक मान का, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने लिखा कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर एक डिबेट था और उस डिबेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया है। मैं इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद उनको देता हूं कि यहां क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जिस तरीके से एनालाइज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के करेक्टर को, जिसमें हमारी हिस्ट्री थी, हमारा कल्चरल वैल्यू था, हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, साथ ही हमारी अपनी फिलॉसफी थी, उन सब को लेकर के वहां उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने एसएमएस में लिखा है कि मैंने यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन से बुद्धिज्म तक को जोड़ा, बौद्ध फिलॉसफी को जोड़ा, और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने अपनी बात रखी और वो मेरी बात इतनी प्रभावशाली लगी कि उस प्रोग्राम को हाई कोर्ट के जज चेयर कर रहे थे और उन तक ने गुरविक मान के बातों की तारीफ की, प्रशंसा की। तो मित्रों, ये जो प्रशंसा और जो तारीफ मिली वो कहां से मिली? अगर आप जरा सा भी गौर से मेरे इस अंश को सुन रहे होंगे तो जवाब फिर से वही है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि उन्होंने नॉलेज को एक महासागर की तरह समझा, एक अटल विंध्याचल पर्वत की तरह नहीं जो हिलता नहीं है। मूवमेंट, लिक्विड फॉर्म, लगातार चीजें इधर से उधर आ रही हैं, उधर की चीजें इसमें आ रही हैं, इधर की चीजें उसमें जा रही हैं, और इस तरीके से एक लगातार नई चीज पैदा हो रही है। और मैं समझता हूं कि यही विकास का रहस्य भी है, यही हमारे नॉलेज का भी रहस्य है, और मुझे लगता है मित्रों कि यही हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने का एक सही सूत्र भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज का स्टेज है। न्यूज में दोस्तों ज्यादा डिस्कस करने के लिए आज कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपसे चर्चा करूं। आपने सुना ही है कि हमारे संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो गया है, उसके बारे में मैंने कल आपसे कुछ चर्चाएं की थी, और मैंने स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अब संसद में जो कुछ भी बातें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, मैं समझता हूं कि अभी जो लगभग लगभग एक महीने का, तीन सप्ताह का संसदीय अधिवेशन ये चलता रहेगा, इसमें जो वर्ड्स आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, जिन बिंदुओं पर बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, बेहतर है कि कुछ दिनों के लिए आप इसी सब्जेक्ट को अपना एक प्राइम सब्जेक्ट बना लें, और आपके टेबल पर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हो, भारत की राज व्यवस्था की किताब हो, और उस किताब से आप लगातार उन टॉपिक्स को देखते चलें जो डिस्कशन में आ रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जो डिस्कशन में ऑलरेडी, जिनकी उम्मीद थी, जो संविधान सभा वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। देखेंगे कि कल के न्यूज में फिर आपको कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं, ऐसी बातें मिल जाती हैं कि आप फिर से अपनी किताब उल्टें और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझें। उदाहरण के तौर पर धर्मनिरपेक्षता शब्द को लीजिए। सेकुलर शब्द का जो अनुवाद हमारे संविधान की उद्देशिका में किया गया है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम प्रस्तावना कह देते हैं, जबकि जो उसका ट्रांसलेशन हुआ है वो उद्देशिका है। उद्देशिका और प्रस्तावना में मित्र बहुत फर्क है। उद्देशिका का मतलब है उद्देश्य, जिसको आप कह सकते हैं उसकी आत्मा है वो, जैसे नारा होता है, एक स्लोगन होता है, और उसमें पूरे के पूरा जो मूवमेंट चल रहा है या जो आप बात कहना चाह रहे हैं उस बात का सार होता है, वो उद्देशिका होता है। प्रस्तावना का तो मतलब होता है कि एक शुरुआत करने जैसी बात है, कि आप किसी चीज को एक शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू करने से पहले आप कुछ कह रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। प्रस्तावना तो उद्देशिका के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो है हमारी उद्देशिका। और उस उद्देशिका में ये चर्चा चली, हमारे गृहमंत्री जी ने कहा कि जो उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, मूलतः वो वहां है ही नहीं। दो बातें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो आपको ध्यान देना चाहिए, जिन पर, वो पहला ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसकी उद्देशिका में दो वर्ड्स नहीं थे, एक धर्मनिरपेक्षता और दूसरा समाजवाद, ये दोनों शब्द नहीं थे। देश में आपातकाल लागू होने के बाद 1976 में जब संविधान में 42वां संशोधन किया गया, 42nd अमेंडमेंट हुआ, तो उस अमेंडमेंट के अंतर्गत ये दो शब्द हमारी उद्देशिका में शामिल किए गए, एक है सेकुलरिज्म और दूसरा है सोशलिज्म। लेकिन इसमें जो सेकुलरिज्म का जो अनुवाद हुआ है, हमारे गृहमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है, वो पंथ निरपेक्षता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के निजी सचिव के रूप में उनके पास काम कर रहा था, तो राष्ट्रपति जी चूंकि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बड़े प्रवक्ता थे और उसको जीते भी थे, वो सच केवल प्रवक्ता ही नहीं थे बल्कि उसको मानते भी थे, तो अपने भाषण में अक्सर वो धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग करते थे। तो मैंने एक बार उनका ध्यान दिलाया था कि सर अगर हम संविधान के ओरिजिनल फॉर्म को लेते हैं तो उसमें ये शब्द नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष शब्द है। तो इसके बाद उन्होंने पंथ निरपेक्ष ही बोलना शुरू कर दिया था और बल्कि कई बार उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द रखा गया है। तो ये एक कल संसद में ये बात उठी और ये न्यूज में भी आपको सुनने को मिला। तो मित्रों ये तो नहीं पूछा जाएगा सिविल सर्विस में कि है नहीं है, क्यों नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है कि उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह बात थी ही नहीं कि इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मान करके चल रहे थे। और शायद इसलिए भी हो क्योंकि जो आपके जो का जो पाकिस्तान है उसने तो अपने आप को सीधे सीधे एक धार्मिक राष्ट्र ही घोषित किया था और भारत उसके धार्मिक राष्ट्र के बिल्कुल विरोध में था, तो वो मान करके चल रहा था कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता जैसी चीज चूंकि हमारे डीएनए में ही है तो इसलिए अलग से इसका उल्लेख करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चलिए जो भी हुआ अब 42nd अमेंडमेंट के जरिए हमारे संविधान की उद्देशिका में आ गया है तो डेफिनेटली वो हमारे संविधान की आत्मा बन चुका है। और मुझे तो लगता है कि बेहतर है, अच्छा हुआ कि उस शब्द को शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों यहां पर एक चीज जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है सिविल सर्विस के लिहाज से वो ये कि फिर इन दोनों में फर्क क्या है, सेक्युलरिज्म की जगह धर्म निरपेक्षता शब्द ही क्यों नहीं रखा गया, पंथ निरपेक्षता क्यों रखा गया? और अगर पंथ निरपेक्षता रखा गया है, और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले ही धर्म निरपेक्षता शब्द इस्तेमाल में खूब आता था, ऐसा नहीं कि उसके बाद यह शब्द आया है, बल्कि पंथ निरपेक्षता शब्द प्रचलन में नहीं था। इसके बावजूद अगर अनुवाद के रूप में पंथ निरपेक्षता रखा गया है तो जाहिर है कि कोई ना कोई बड़ा कारण तो रहा होगा और वह कारण इस तरीके का रहा होगा जो सीधे सीधे धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर स्पष्ट करता हो। तो दोस्तों अभी मैं उस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं कि इन दोनों में क्या अंतर है, मैं बिल्कुल इस बात की चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को यह जरूर सलाह देना चाहता हूं कि आप इसके अंतर को देखें। आगे चलकर कभी अवसर मिला तो इसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी चर्चा कर देने के बाद इस पर जो आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपके दिमाग का जो मंथन होना चाहिए, उस मंथन के अवसर से मैं आपको वंचित नहीं करना चाहता, क्योंकि मित्रों आपकी सफलता के लिए आपको ही मजबूत होना पड़ेगा, आप में ही वो एनालिसिस पावर डेवलप होनी चाहिए, आपके दिमाग में ब्रिलियंसी होनी चाहिए, वो ब्राइटनेस होनी चाहिए, वो कंसेप्चुअलिटी आप उतने स्ट्रांग और क्लियर होनी चाहिए कि आप अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रख सकें। तो ये एक पॉइंट कल के न्यूज से इमर्ज होता है, उभर कर आता है और मैं चाहूंगा कि इन सब पर आप लोग विचार करें। फ्रेंड्स आपको मालूम है, कल मैं बता भी चुका हूं कि चूंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान हमने स्वीकार किया था, इसीलिए संविधान दिवस भी 26 नवंबर को घोषित किया गया है। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि फिर इस पर संसद में बहस अभी क्यों कराई जा रही है, हर साल तो ऐसा नहीं होता है, इसी साल क्यों हो रहा है? जबकि अगर आप 1949 को लेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि इसके कोई 50 साल पूरे हो रहे हों या 60 साल पूरे हो रहे हों या 175 साल पूरे हो रहे हों, जैसा कि सामान्यतः होता है कि इन दिवसों को हम सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली के रूप में मनाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो फिर इस पर बहस क्यों कराई जा रही है? तो एक छोटी सी बात है मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा और वो ये है कि इस साल डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती है और आपको मालूम है कि हमारे संविधान को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, केवल इसी रूप में नहीं कि वो एक ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, बल्कि इस रूप में कि वो बहुत ही उनका माइंड लीगल इश्यूज की जानकारी, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी, नो डाउट ही हैज अ ब्रिलियंट माइंड, बहुत ब्रिलियंट थे वो, तो इस रूप में भी तो उनकी 125वीं जयंती की स्मृति में आप कह लीजिए कि ये दो दिन का डिस्कशन संसद में रखा गया है, तो ये आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों, दो छोटी छोटी खबरें और भी थी और मैं समझता हूं कि इसमें जो अब जिस खबर को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो एक महत्वपूर्ण खबर है और वो ये है कि बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि वहां नए साल से नशाबंदी, या एक समय दिया उन्होंने कि नशाबंदी लागू कर दी जाएगी। मित्रों, ये जो नशाबंदी का जो प्रश्न है ये बहुत पहले से उठता चला आ रहा है। बहुत से राज्यों ने इसके बारे में कदम उठाए जिसमें खासकर गुजरात और मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद मणिपुर और नागालैंड में तो अभी भी नशाबंदी लागू है। दूसरे राज्यों ने बहुत कोशिश की जिसमें शायद हरियाणा भी था और आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसा हुआ, एग्जैक्ट थोड़ा समय मिस कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे, लेकिन गुजरात, मणिपुर और नागालैंड में इनफैक्ट अभी भी नशाबंदी कानून लागू है। इन राज्यों ने कदम उठाए और सच पूछिए तो कुछ ही दिनों के बाद उनको अपने कदम विड्रॉ करने पड़े। एक्चुअल में है ये कि जो नशाबंदी है इसके दो बड़े विपरीत पक्ष हैं। पहला तो यह है कि नो डाउट, इसमें कोई समाजशास्त्रीय इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नशे की आदत के कारण हमारे देश के लोग, जो खासकर नीचे तबका का वर्ग है, वो बहुत गरीब है, गरीब बना हुआ है। दोनों कारण है, नशे के कारण वो गरीब हैं और चूंकि नशा करते हैं इसीलिए वो गरीब लगातार होते भी चले जा रहे हैं। उनकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा केवल शराब पीने में बीत जाता है और केवल ये नहीं कि वो शराब पी करके अपना पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं या अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपना स्वास्थ्य भी बर्बाद करते हैं। और यह भी रिपोर्ट में आ चुका है कि जो गांव के लोग हैं या जो गरीब तबका है, वो जो गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर भी हैं, वो अपने हेल्थ के कारण, जैसे उनको थोड़ी सी बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम हुई वैसे ही वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि इलाज पर उनका बहुत अधिक खर्च हो जाता है। दूसरा पक्ष यह है कि सरकार इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्न करती है। जैसे बिहार के बारे में ही लगभग 3,000 करोड़ रुपए उसको हर साल इससे शुल्क के रूप में मिलते, टैक्स के रूप में मिलते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार, राज्य सरकार इन 3,000 करोड़ रुपए को खत्म करके, अपनी रेवेन्यू में से कम करके और नशाबंदी लागू कर दे, लेकिन अगर आर्थिक रूप से सोचा जाए तो राज्य को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो 3,000 करोड़ रुपए वो टैक्स के रूप में लूज करेगी, आप सच पूछिए तो हेल्थ पर जो उसको खर्चा करना पड़ता शायद उससे वो मीट आउट हो जाएगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी। साथ ही शराब से केवल यही नहीं कि हेल्थ खराब हो रही है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर्स की भी प्रॉब्लम होती है, घर में झगड़े भी बढ़ते हैं, जो वर्किंग आवर्स है उसमें भी नुकसान होता है, आदमी की कैपेसिटी भी कम होती है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो आप देखेंगे कि वो 3,000 करोड़ रुपए वसूल हो जाएंगे, लेकिन ये तब हो जब ये ऐसा हो जाए, आदर्श स्थिति ये नहीं है। जिन राज्यों ने लागू किया कुछ समय के बाद ही महसूस हुआ कि इसे विड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि इसके पक्ष में कोई आंदोलन खड़ा हुआ कि नहीं, आप ऐसा लागू क्यों कर रहे हैं और आप इस कानून को हटाइए, कोई विपक्ष में ऐसी बात नहीं उठी कि आंदोलन खड़ा हो गया कि आप नशाबंदी कानून खत्म कीजिए। कुछ समय के बाद ही ये देखा गया कि जो नशे के आदि हैं वो किसी न किसी तरीके से इस चीजों को हासिल कर रहे हैं, या कह लीजिए कि ब्लैक स्मगलिंग बढ़ गई, तस्करी बढ़ गई, और फिर जो शराब उनको थोड़ी सी कम कीमत पर मिल रही थी वही शराब वो बहुत ज्यादा महंगी में खरीद रहे हैं और किसी भी हालत में पी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नशाबंदी करने के कारण जो नशे की आदत है वो कम हो जाए, शराब का इस्तेमाल कम हो जाए, उल्टे तस्करी बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर्स की प्रॉब्लम होने लगी और लोगों का ज्यादा पैसा उसमें जाने लगा, तो एक काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचे जाने की जरूरत है कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए। इसी को लेकर के फ्रेंड्स आज इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट भी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। साथ ही दैनिक भास्कर ने खासकर हमारे जो संविधान है उनके मूल्यों के बारे में एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है, ये भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। मित्रों, इसके साथ ही दो और अच्छे आर्टिकल आज आपको नॉलेज सेंटर पर पढ़ने को मिलेंगे। एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जो उसमें वो खासकर जो आईएसआईएस के खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कौन से 3-4 बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, इसको आधार बना करके एक लेख लिखा गया है। बहुत अच्छा लेख है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। इसमें इन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए, पहला तो ये है कि अगर आईएस के खिलाफ आपको ये सब कदम उठाने हैं तो जो मानव अधिकारों का जो अतिक्रमण होगा उसमें ढिलाई देनी होगी, और जो सुरक्षा बल और न्यायपालिका के उनके अधिकारों में भी बढ़ोतरी करनी होगी। ऐसा नहीं कि मानव अधिकार के नाम पर फिर आप उनके कामों की निंदा करें और उन्हें सजा दें। दूसरा, उन्होंने ये दिया है कि जितने भी खासकर शक्तियां हैं विश्व की, उन सबको आपस में अपने टकराव छोड़ करके, अपने निजी हितों को छोड़ करके, केवल इसी के खिलाफ एकजुट होकर के काम करना होगा। हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा पुतिन जी को पसंद न करते हो, लेकिन जहां तक आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात है तो दोनों को एक होना होगा। और आप देख ही रहे हैं कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं ओलांदे जी, वो लगातार इस कोशिश में है कि टर्की द्वारा विमान मार गिराए जाने के कारण जो एक तनाव सा पैदा हो रहा है, दुनिया दो ध्रुवों में फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से कि उस तनाव को कम कर सके, और हो सकता है कि वो अपनी इस कोशिश में सफल हो जाए, जो बहुत बड़ी बात होगी। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि खासकर जो शरणार्थी, जो मध्य एशिया पश्चिम एशिया से जो शरणार्थी यूरोपीय देशों में जा रहे हैं, उन शरणार्थियों के साथ में ये जो आईएसआईएस के जो अपने को जिहादी कहते हैं वो भी चले जा रहे हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो निश्चित रूप से जो शरणार्थियों के बारे में भी जो नीतियां हैं वो थोड़ी सी बदलाव लाना होगा, और वहां फिर जो जांच परख होती है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत करनी होगी। तो शरणार्थियों संबंधी जो नीतियां हैं उनको भी सख्त बनाना होगा। इसको लेकर के तीन चार पॉइंट्स को लेकर के इन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो आप इसे भी देख लें, ये इंग्लिश में है। अंग्रेजी में मित्रों इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको स्पेशली मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। ये केवल इस बात को इन्होंने कहने की कोशिश की है कि जो हमारे पार्लियामेंट से जो भी विधेयक पारित होते हैं, सामान्यतः अनिवार्य नहीं होते कि उन विधेयक को जो हमारी संसदीय समितियां होती हैं वो देखें भी। कुछ को जिनको जरूरी समझा जाता है या जो डिबेट में जो सॉल्व नहीं हो पाती हैं तो उनको फिर संसदीय समितियों को सौंप दिया जाता है। इसमें इन्होंने प्रश्न उठाया कि नहीं, ये अनिवार्य होना चाहिए कि संसद में कोई भी विधेयक लाए जाने से पहले उसे संसदीय समिति को दिया जाए, या संसद में बहस होने के बाद उसे संसदीय समिति को दिया जाए और संसदीय समिति उसके छोटी छोटी चीजों पर विचार करे, क्योंकि वो एक्सपर्ट होती है इनमें, उस पर इत्मीनान से वो काम कर सकती है, उसके पास वक्त होता है और यही जिम्मेदारी उसे दी गई है। तो वह उसके सारे के सारे जो सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी से छोटी बातें होती हैं उनको भी जांचे परखे और इसके बाद फिर वो विधेयक का रूप ले। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि संसदीय समिति का जो चैप्टर है, आपके राज व्यवस्था में अलग से चैप्टर है, इसको इस चैप्टर को आप इसी बहाने आज पूरा कर लें। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत से क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर पर आज अवेलेबल होंगे, आप उन सबको देख लेंगे, उनकी अलग से चर्चा करना मैं जरूरी नहीं समझ पा रहा हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन सभी मित्रों को जिन्होंने ईमेल लिखे हैं, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, विलास इंगले जो पुणे से हैं, डॉक्टर अभिजीत जो नैनीताल से हैं, मुकेश देरवालिया जो राजकोट से हैं, यासीन और राकेश कुमार मीना जयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत लेना चाहूंगा, और कल तक के लिए ही नहीं बल्कि परसों तक के लिए, सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप लोगों का दिन शुभ हो, ऊर्जावान हो, उपयोगी हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।